शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। दाविद का गंभीर पाप। जब वसंत काल में राजा लोग युद्ध करने निकलते थे, दाविद ने योआब उनके अधीनस्थ अधिकारियों और सारे इजरायली सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। उन्होंने अमोनियों का नाश कर दिया और रब्बा पर अधिकार कर लिया, मगर दाविद यरूशलेम में ही रह गए थे। एक दिन शाम के समय में जब दाविद अपने बिछोने से उठकर राजमहल की छत पर टहल रहे थे, वहां से उन्हें स्नान करती हुई एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। दाविद ने किसी को भेजकर यह मालूम करवाया कि वह स्त्री कौन थी। उन्हें सूचित किया गया, वह एलियाम की पुत्री बैतशेबा है, इत्ती उरिया की पत्नी। दाविद ने दूतों को भेजकर उसे बुलवा लिया। इस समय वह अपने स्त्री धर्म से शुद्ध हो चुकी थी। वह दाविद के पास आ गई और दाविद ने उसके साथ संबंध बनाया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। वह गर्भवती हो गई। उसने दाविद को यह संदेश भेजा, मैं गर्भवती हो गई हूँ। यह मालूम होने पर दाविद ने योआब को यह संदेश भेजा, हित्ती उरिया को यहाँ भेज दो। योआब ने उरिया को दाविद के पास भेज दिया। जब उरिया दाविद के सामने उपस्थित हुआ, दाविद ने उससे योआब का हालचाल मालूम किया, सैनिकों और युद्ध की स्थिति भी मालूम की। उसके बाद दाविद ने उरिया को आदेश दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। राजा की ओर से उसके पीछे पीछे उसके लिए उपहार भी भेजा गया। मगर उरिया राजमहल के द्वार के निकट ही उसके स्वामियों के सभी सेवकों के सोने के स्थान पर सो गया और वह अपने घर नहीं गया। जब दाविद को यह बताया गया, उरिया तो अपने घर गया ही नहीं। दाविद ने उरिया से पूछा, तुम यात्रा से लौटे हो तो तुम अपने घर क्यों नहीं गए? उरिया ने उन्हें उत्तर दिया, संदूक इज़राइल और यहूदिया की सेना मैदान में तंबू में ठहरे हुए हैं, और योआब मेरे स्वामी और मेरे स्वामी के सैनिक मैदान में शिविर डाले हुए हैं। तब क्या यह मेरे लिए सही है कि मैं अपने घर जाऊं और खा पीकर अपनी पत्नी के साथ सो जाऊं? आपकी और आपके प्राणों की शपथ, मुझसे वह सब हो ही नहीं सकता। यह सुन दाविद ने उससे कहा, आज भी यहां ठहरो, मैं तुम्हें कल विदा कर दूंगा। तब उरिया यरूशलेम में एक दिन और ठहर गया। तब दाविद ने उसे आमंत्रित किया। उसने दाविद के साथ भोजन किया और दाविद उसे मदोन्मत्त होने तक दाख मधु पिलाई। संध्या काल में उरिया वहां से निकलकर अपने स्वामी के सेवकों के लिए निर्धारित स्थान पर अपने बिछोने पर जाकर सो गया, मगर अपने घर नहीं गया। प्रातः दाविद ने योआब को एक पत्र लिखा और उसे उरिया के हाथ से भेज दिया। दाविद ने पत्र में लिखा था, उरिया को ऐसे मोर्चे पर भेज दो जहां युद्ध सबसे तेज हो, और फिर उसे वहां अकेला छोड़ पीछे हट जाना कि उस पर शत्रुओं का वार हो और वहीं उसकी मृत्यु हो जाए। जब योआब नगर पर घेरा डाल रहे थे, उन्हें मालूम था कि किस स्थान पर शत्रु के सबसे अधिक बलवान सैनिक युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने उरिया को उसी स्थान पर युद्ध करने के लिए आदेश दिया। नगर के शूर योद्धा योआब से युद्ध करने निकल आए। दाविद के कुछ सैनिक इस हमले से घात किए गए, हित्ती उरिया भी इसमें मारा गया। योआब ने दाविद को युद्ध का विस्तृत समाचार भेज दिया। योआब ने दूत को ये विशेष निर्देश दिए, जब तुम राजा को युद्ध का विस्तृत लेखा दे चुको, तब यदि राजा गुस्सा होते दिखे और यदि वह तुमसे पूछे, तुम लोग युद्ध करते हुए नगर के इतने निकट क्यों जा पहुंचे थे, क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि ना थी कि वे लोग तुम पर शहर पना से बांध चलाएंगे? येरूब बाशेत का पुत्र अबीमेलेक किसके वार से मारा गया था? क्या एक स्त्री ने ही उस पर शहर पना से चक्की का ऊपरी पार्ट नहीं फेंका था? क्या वह तेबेज में इसी प्रकार मारा नहीं गया था? तुम लोग शहर पना के इतने निकट गए ही क्यों? तब तुम्हें उत्तर देना होगा, महाराज, इसी में आपके सेवक हित्ती उरिया की भी मृत्यु हो गई है। तब दूत चला गया। उसने आकर दाविद को वह सब सुना दिया जिसे सुनाने का आदेश उसे योआब ने दिया था। दूत ने दाविद से कहा, शत्रु सैनिक हम पर प्रबल हो गए थे, वे हम पर हमला करने मैदान तक आ गए, मगर हमने उन्हें नगर प्रवेश तक धकेल दिया। इसके बाद धनुर्धारियों ने शहर पना से हमारी सेना पर बाणों की बौछार कर दी। राजा के कुछ सैनिक इसमें मारे गए, उन्हीं में आपका सेवक हित्ती उरिया भी था। दाविद ने दूत को यह आदेश दिया, तुम्हें जाकर योआब से यह कहना होगा, तुम इस बात से उदास ना होना, क्योंकि तलवार तो किसी को आज मारती है तो किसी को कल। इस नगर पर अपना हमला और अधिक प्रबल कर दो कि नगर नष्ट कर दिया जाए। तुम यह कहकर योआब को प्रोत्साहित कर देना। जब उरिया की पत्नी को यह मालूम हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह अपने पति के लिए रोने लगी। जब विलाप के लिए निर्धारित अवधि पूरी हो गई, दाविद ने उसे अपने पास बुलवा लिया कि वह उसकी पत्नी बन जाए, मगर दाविद के इस काम ने यहावे को अप्रसन्न कर दिया।